श्रीमद् भागवतम छठा स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 17 तेर तानी अगानी पूयन्ते तपो दाना प्रातादिभि न धर्माजम् तद् दीर्दयाम् तद् अपि सङ्गृही सेवया ते सनगानि पूयन्ते तपोदानव्रातदिभिः धर्मजं तद्धृदयाम् तदपि सङ्गे सेवया ते सनगानि पूयन्ते तपोदानव्रतादिभिः धर्मजं तद्धृदयाम् तदपि सङ्गी सेवया ते सनगानि पूयन्ते तपोदान प्रतादिभिः धर्मजं तद्धृदयाम् तदपि सङ्गी सेवया
तपोदानव्रतादिभिः धर्मजं तद्हृदयम् तदपि सङ्गी सेवया
माता जी
तई उनके द्वारा तानी वे सब अघानी पाप कर्म तथा उनके फल पुयन्ते विनष्ट हो जाते हैं तपह तपस्या दान दान व्रतयादि भी व्रतों तथा अन्य कार्यों के द्वारा न नहीं अधर्मजम अधार्मिक कार्यों से उत्पन्न तत् उसका हृदयम हृदय तत् वह अपि भी इस अंग्रे भगवान के चरण कमलों की सेवया सेवा द्वारा। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। यद्यपि तपस्या दान व्रत तथा अन्य विधियों से पापमय जीवन के फलों का निरसन किया जा सकता है, किंतु ये पुण्य कर्म किसी के हृदय की भौतिक इच्छाओं का उन्मूलन नहीं कर सकते। किंतु यदि वह भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है तो वह तुरंत ही ऐसे सारे कलमशों से मुक्त कर दिया जाता है। दोहराइए, यद्यपि तपस्या दान व्रत तथा अन्य विधियों से पापमय जीवन के फलों का निरसन किया जा सकता है, किंतु ये पुण्य कर्म किसी के हृदय की भौतिक इच्छाओं का उन्मूलन नहीं कर सकते। किंतु यदि वह भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है तो वह तुरंत ही ऐसे सारे कलमशों से मुक्त कर दिया जाता है। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के 11 स्कंद अध्याय 2 श्लोक 42 में कहा गया है, भक्ति परेशानुभवो विरक्ति अन्यत्र च। भक्ति इतनी प्रबल होती है कि भक्ति करने वाला तुरंत ही पाप की इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। भौतिक जगत में सारी इच्छाएं पापपूर्ण हैं, क्योंकि भौतिक इच्छा का अर्थ ही है इंद्रिय तृप्ति, जिसमें ऐसा कर्म निहित होता है जो न्यूनाधिक पापपूर्ण होता है। किंतु शुद्ध भक्ति तो अन्याभिलाषिता शून्यम होती है, दूसरे शब्दों में या उन भौतिक इच्छाओं से मुक्त होती है जो कर्म तथा ज्ञान से प्रतिफलित होती है। जो भक्ति पद को प्राप्त होता है उसमें भौतिक इच्छाएं नहीं रहती, अतएव वह पापमय जीवन से परे होता है। भौतिक इच्छाओं को पूरी तरह से रोक देना चाहिए, अन्यथा भले ही किसी की तपस्या दान व्रत फिलहाल उसे पाप से मुक्त करा सके, किंतु उसकी इच्छाएं पुनः प्रकट होंगी, क्योंकि उसका हृदय अशुद्ध रहता है। इस तरह वह पाप कर्म करेगा और कष्ट उठाएगा।
ओम यां तपस ज्ञानंजना शलक्या चक्षुरन्मीलितानि येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम् सावितानेन भूतवे स्वयं रूपा कदामयम् राजम् वन्देऽहम् श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपाम् सगराजताम् सहागना रघुनाथान्वितं तं सजैव सद्वैतं सवधूतं वैजना साहितं श्रीराधा कृष्णापदा सहगनानत। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांद राधा कंता नमोस्तुते। धाप्ता कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुस्मृति नमामि। वांछा कल्पा तर्भ्याचा जय श्री कृष्ण चैन प्रभु निधान। हरे ते स्थान यगानि पूयन्ते तपोदान व्रतादिभि धर्म जम तदयम सदपि संग्री सेवया। ये श्लोक का उच्चारण विष्णु दूत कर रहे हैं। आप परिचित हो विष्णु दूतों से? विष्णु दूत किन्हें कहा जाता है? जो भगवान विष्णु के प्रतिनिधि हैं और आप इस समय आजम इनकी कथा पढ़ रहे हो जिसके द्वारा आपको भाई नाम की महिमा का ज्ञान प्राप्त होता है। आजमीर ने जन्म एक ब्राह्मण खानदान में लिया था। ये जो कथा है बहुत ही प्राचीन है। ये घटना बीती थी लगभग 6 या 7 हजार साल पूर्व। तो आजमीर का जन्म हुआ था ब्राह्मण खानदान में, अनेक विधियों का पालन कर रहे थे, पूरा ज्ञान था उनके पास और पत्नी थी, बच्चे थे, माँ बाप थे। एक दिन जब आजमीर जंगल से लौट रहे थे, जंगल में गए थे भगवान की पूजा के लिए फूल फल लाने के लिए, तो उन्होंने देखा एक वैश्य को अपने प्रेमी के साथ नशे में, और इस वैश्य के प्रति वो आकर्षित हो गए और इस वैश्य को पहले रखा नौकरानी के रूप में और फिर पत्नी के रूप में। शास्त्र में कहा गया है कि मन के द्वारा हमें भगवान के चरण कमलों का स्मरण करना चाहिए निरंतर। मन मन भावा मन भक्तो माध्या जी मम नमस्कारो मन वश सत्यम ते पति जने पियोश में। भगवान कहते हैं कि अगर तुम मेरा भक्त बनोगे, मन द्वारा मेरी चिंतन करोगे, मुझे प्रणाम करोगे, तो बिना शंका के कहां लौटोगे? भगवान के धाम। पर आजमीर की कमी क्या थी? उसने उस वैश्या का स्मरण आरंभ कर दिया। वो जो घटना उन्होंने देखी उसका स्मरण आरंभ कर दिया, जिसका ये परिणाम हुआ कि भक्ति गिरते गई और वो बुरी संगत में आ गए। संगत का भी बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है साधु संग में रहो। साधु संग साधु संग सर्वशास्त्र काया लाभ मात्र साधु संग सर्वस विहाया। सारे गुण अनुकूल हो सकते हैं अगर आप शुद्ध भक्तों की संगत में रहो। पर आजमीर ने क्या गलती की? वैश्य की संगत में रहने लग गया, और क्योंकि वैश्य की संगत में रह रहा था तो इस कारण गलत कामों में जुड़ता गया और जिसके कारण अत्यंत पापी बन गया। पर एक भाग्य का कार्य था, वो ये था कि उसने अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम दिए थे। उनके 10 बेटे हुए थे और जिनमें सबसे छोटे बेटे का नाम क्या था? और जिसके प्रति उसका बड़ा गहरा आकर्षण था। नारायण के बिना एक पल भी रहना उसके लिए असंभव था। अगर नारायण एक मिनट के लिए भी नजरों से दूर जाता था तो घबरा जाते थे। तो इस प्रकार दिन में हजारों बार दिन में नारायण का नाम उपकार रहे थे। इसीलिए हमारे वैदिक शास्त्र में भी कहा जाता है कि हमें एक दूसरे को भगवान के नाम देने चाहिए और बच्चों को खास करके भगवान के नाम देने का रिवाज है। क्यों? आप उन बच्चों को पुकारोगे, इसके द्वारा भगवान के नाम को भी पुकार रहे हो, इसके द्वारा आपको अज्ञात स्वीकृति का लाभ हो रहा है। ज्ञात स्वीकृति अज्ञात स्वीकृति। ज्ञात स्वीकृति का अर्थ है अब जानते हो इस कार्य द्वारा आपको लाभ पहुंचेगा, इसलिए आप ये पुण्य कार्य करते हो। अज्ञात स्वीकृति का अर्थ है आप जानते नहीं पर इस कार्य से लाभ आपको पहुंच रहा है। जैसे भगवान के नामों में इतनी शक्ति है, ज्ञान से अज्ञान से जो भी ले उसको लाभ पहुंचेगा। तो यामराज ने निर्णय कर लिया कि अब आजमीर का मृत्यु का समय आ गया। तो उन्होंने 3 यामदूतों को भेजा आजमीर को नरक में लाने के लिए। 3 यामदूत मतलब कि 3 सिपाही यामराज के सेना के। और 3 क्यों? क्योंकि 3 साधन हैं, माध्यम हैं, जिनके द्वारा भगवान की सेवा करते हो और भगवान को भूलते हो। एक है ध्येय बॉडी, देह के द्वारा भगवान की सेवा कर सकते हो और देह के द्वारा इंद्रिया तृप्ति में जुड़ सकते हो। फिर है मन, मन के द्वारा भगवान का स्मरण कर सकते हो और मन के द्वारा भौतिक विषयों का स्मरण कर सकते हो। फिर है वाणी, वाणी के द्वारा आप भगवान के नाम का उच्चारण कर सकते हो और यही वाणी के द्वारा प्रज्वलता और अनेक प्रकार के भौतिक कार्यों में की चर्चा कर सकते हो। तो यामराज ने यावदूतों को भेजा, राजा मिले जैसे ही यावदूतों को देखा वो घबरा गए। घबरा कर उन्होंने अपने छोटे बेटे को पुकारा जो कि बिल्कुल निकट में ही खेल रहा था, नारायण शब्द इतने जोर से, नारायण इतने जोर से पुकारा उसने कि तुरंत वहां भगवान विष्णु के प्रतिनिधि पहुंच गए। भगवान विष्णु के प्रतिनिधि घूमते रहते हैं, जहां भी देखते हैं किसी ने भगवान के नाम को पुकारा है वहां पहुंच जाते हैं। आप हर स्थान में वृंदावन बना सकते हो, क्या है उपाय, जहां भगवान के नाम का उच्चारण हो वो स्थान बन जाता है वृंदावन। तो जहां भगवान के नाम का उच्चारण हो रहा हो, चाहे आपके घर में हो रहा है, वहां भगवान विष्णु के प्रतिनिधि उपस्थित रहते हैं। तो विष्णु दूतों ने पहुंचकर यामदूतों को रोक दिया आज मिल को कि आत्मा को नरक मिलने जाने से। और यहां इन श्लोकों में विष्णुदूत संक्षेप में हरि नाम की महिमा का उच्चारण कर रहे हैं। आज के श्लोक में क्या कहा जा रहा है, आज के श्लोक में विष्णुदूत कह रहे हैं कि आप यज्ञ, आप तपस्या, दान और व्रत, इनके द्वारा अपने पापों के परिणाम को घटा सकते हो, न्यूट्रलाइज कर सकते हो। जैसे आप देखते हो अनेक भौतिकवादी व्यक्ति जो इंद्रिय तृप्ति में भी रुचि लेते हैं दान देते हैं, कई लोग दान देते हैं निष्काम भाव से, पर कई दान देते हैं इस भाव से हमें इस दान के बदले में कुछ लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, दान तो दो चाहे भौतिक इच्छा हो। फिर तपस्या, कई लोग तपस्या करते हैं, जैसे आप देखते हो कई लोग मंगलवार का व्रत रखेंगे, शनिवार का व्रत रखेंगे और अनेक और प्रकार के व्रत रखेंगे, कई बार दस दस दिन का व्रत रखेंगे, मौन व्रत रखेंगे। पापा जी कहते थे मौन व्रत रखना है तो इसका अर्थ है केवल हरि नाम को उच्चारण करो, ये है असली मौन व्रत। मौन व्रत का यह अर्थ नहीं आप कुछ बोलो ही नहीं, पर कई लोग इसका करते हैं। हाँ, मंगल हफ्ते में एक बार मौन व्रत रखते हैं, हफ्ते में दो दिन व्रत। मौन व्रत वैष्णव के लिए क्या है, केवल जीव द्वारा भगवान के नामों का उच्चारण करो, भौतिक विषयों की चर्चा मत करो, ये है मौन व्रत। ये मौन व्रत नहीं कि आप कुछ बोलो ही नहीं। तो पर आप देखते हो भौतिक स्थिति में कई लोग मौन व्रत करते हैं, अनेक प्रकार की तपस्या करते हैं, पर इस भावना से नहीं कि हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त हो, इस भावना से कि जो हम पाप करके आए हैं वो पापों का परिणाम मिट जाए, उस भावना से। जैसे आपके हमारे देश में जब कुंभ मेला का उत्सव होता है, कुंभ मेला के उत्सव में करोड़ों लोग जाते हैं दर्शन के लिए, है कि नहीं, पर क्या इस भावना से जाते हैं कि हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त हो, नहीं, इस भावना से जाते हैं कि हमें पाप का परिणाम हम घटा दें, न्यूट्रलाइज कर दें और फिर हम बाहर आकर फिर पाप कर लेंगे, फिर अगला कुमाएगा फिर चले जाएंगे स्नान करने। जैसे कई लोग हर महीने वृंदावन जाते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, अच्छा भाव है, पर यह भाव नहीं इन कार्यों का कि हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त हो, ये भाव रहता है कि जो हम पाप कर रहे हैं उसका परिणाम हम घटा दें या न्यूट्रलाइज कर दें, है कि नहीं। तो यहां विष्णुदूत क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं तपस्या, दान और अनेक व्रतों के द्वारा आप अपने पाप के कर्म परिणाम को न्यूट्रलाइज घटा सकते हो यार, पर इसके द्वारा जो आपके हृदय में इंद्रिय तृप्ति या पाप की इच्छा है उसको आप दूर नहीं कर सकते। आप समझे, इस छठे स्कंद के आरंभ में ही शुकदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न पूछा था। शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज ने कहा, परीक्षित महाराज पांचवें स्कंद में अनेक नरकों के विषय में सूचना प्राप्त हो गई थी शुकदेव गोस्वामी के द्वारा। भागवतम के पांचवें स्कंद में नरकों का वर्णन किया गया है, जहां यह समझाया गया है कि किस प्रकार के पाप का क्या परिणाम होगा। तो परीक्षित महाराज घबरा गए यह सुनकर। वो सोचने लगे इतना भयंकर परिणाम भुगतना पड़ेगा जो इंद्रिया तृप्ति में जुड़ते हैं, इनका उद्धार कैसे होगा, कैसे होगा इनका उद्धार। ये जो पाप की इच्छा है हमारे हृदय में, इसको हम कैसे दूर करेंगे, ये था परीक्षित महाराज का प्रश्न। और उन्होंने उदाहरण दिया जिसकी हमने चर्चा की थी उस दिन, दो दिन पहले, कि एक हाथी स्नान करता है, शरीर को साफ कर देता है, और फिर जैसे ही तालाब के बाहर आता है एक मिनट में ही मिट्टी में बैठता है और फिर गंदा हो जाता है। तो उन्होंने कहा उसका क्या लाभ, आज पाप करो फिर पछतावा एटोन, फिर पाप करो फिर पछतावा एटोन करो। हमें ऐसा ज्ञान दो परीक्षित महाराज ने कहा, जिसके द्वारा ये जो पाप करने की इच्छा है ये दूर हो जाए। सच बात है, आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, आप डॉक्टर को ऐसे कहते हो, डॉक्टर साहब इलाज कीजिए, पर इलाज का परिणाम सिर्फ थोड़ी देर होना चाहिए और फिर 6 महीने बाद बीमारी फिर हो जाए, चलेगा, ऐसे बोलते हो। आप डॉक्टर को क्या बोलते हो, ऐसी दवाई दो कि जड़ से बीमारी दूर हो जाए, है ना। सच बात है कि झूठ, आप कहते हो जड़ से बीमारी दूर हो जाए। अगर डॉक्टर साहब आपको दवाई दे, 2 महीने के लिए उसका लाभ हो, 3वें महीने फिर वही बीमारी हो जाए, तो आप क्या कहोगे, डॉक्टर की दवाई बेकार किया, है ना। हाँ, दूसरे तीसरे महीने वही बीमारी वापस हो जाती है, तो आप कहते हो जड़ से ये बीमारी दूर हो जाए। जड़ से बीमारी दूर हो जाएगी तो फिर ये बीमारी फिर से नहीं आएगी। तो परीक्षित महाराज का प्रश्न इसी प्रकार का था। परीक्षित महाराज ने कहा शुक्रदेव गोस्वामी से, ऐसी शिक्षा दीजिए कि जड़ से ही ये जो पाप इंद्रिय तृप्ति के कार्य में जुड़ने की इच्छा रहती है, जड़ से ही ये दूर हो जाए। ये क्या संभव है। और परीक्षित महाराज के प्रश्न के उत्तर में शुक्रदेव गोस्वामी ने कहा, हाँ यह संभव है। क्या है माध्यम, केचित केवल भक्ति वासुदेव परायणा, शुद्ध भक्ति के द्वारा। और उन्होंने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, भागवतम में अनेक भागवतम का लगभग हर उदाहरण इतना सुंदर है। तो भागवतम में कहा गया है, शुक्रदेव गोस्वामी ने कहा, जिस प्रकार जब खोरा होता है, जैसे सूर्य की किरण प्रकट होती है, खोरा समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार उन्होंने कहा कि शुद्ध भक्ति के पालन से ये जो पाप की इच्छा है हृदय में, जो अनेक भौतिक इच्छाएं हैं, ये दूर हो सकती है। और फिर उन्होंने आगे बढ़कर आज ही उनकी कथा सुनाई। तो श्रीमद् भागवत द्वारा हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है, जिसके द्वारा आप ये जड़ को दूर काट सको, और वो माध्यम है भक्ति योग। तो आज के श्लोक में विष्णुदूत हमें बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। वो कह रहे हैं तुम तपस्या कर लो, दान दे लो, अनेक प्रकार के व्रत करो, विधियों का पालन करो, पर इनके द्वारा जो पाप की इच्छा है हृदय में वो दूर नहीं होगी। तो आप पूछोगे फिर महाराज कोई उपाय है क्या इस समस्या का? जैसे भगवान कहते हैं गीता में, देवी ऐश गुणमाय मम माया दुर्दया। भगवान कहते हैं माया का विरोध करना बड़ा कठिन है। तो आप कहोगे जब भगवान स्वयं कह रहे हैं कठिन है तो हमारी क्या उम्मीद है फिर? और फिर भगवान ये भी कहते हैं आगे, क्या कहते हैं आगे? माया में प्रबुद्ध माया में ताम धरंती थे, अगर कोई मेरी शरण में आएगा तो फिर इसको दूर कर सकता है। तो यही संदेश इस श्लोक में भी दिया जा रहा है। यहां क्या कहा जा रहा है, पर किसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है, वो तुरंत ही ऐसे सारे कल्मषों से मुक्त हो जाता है। तो भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, तो ये है भक्ति योग। भक्ति योग का क्या अर्थ है? भगवान के चरण कमलों की सेवा करना। और आज के श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी इसी विषय की स्थापना कर रहे हैं। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं भागवतम के 11वें स्कंद के प्रसिद्ध श्लोक का उपयोग करके, जिसमें कहा गया है कि भक्ति योग एक माध्यम है जिसके द्वारा ये जो पाप की इच्छा है मन में हृदय में ये दूर हो सकती है। और ये कहा गया है आगे, चाहे आपके ये जो भौतिक इच्छाएं हैं, कई बार लोग सत्व गुण में होते हैं, जैसे आप जानते हो जब हमें भौतिक जगत के संबंध में आते हैं तो हम तीन गुणों के प्रभाव में आ जाते हैं। क्या ये तीन गुण? सत्व गुण, राजगुण, तमोगुण। उदाहरण दिया जाता है जैसे बादल से जब वर्षा गिरती है, पानी को ऊपर या पकड़ लो बाल्टी में तो साफ रहेगा, पर जैसे ही वो पृथ्वी को छूता है मिट्टी आ जाती है। तो इसी प्रकार जैसे हम भौतिक जगत में आते हैं हम इन तीन गुणों के प्रभाव में आ जाते हैं, सत्वगुण, राजगुण, तमोगुण। सत्वगुण जो है दूसरे जो दो गुणों से ज्यादा ऊंचा है। सत्वगुण में हमारी इंद्रियों में भक्ति की थोड़ी इच्छा रहती है, और सत्वगुण के प्रभाव में आकर आपके पास ज्ञान रहता है क्या कार्य करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पर आप इंद्र तत्व के भावों से बिल्कुल मुक्त नहीं होते। तमोगुण के प्रभाव में, राजगुण के प्रभाव में आकर व्यक्ति बड़ा परिश्रम करता है, पर परिश्रम का परिणाम जो है उसका लाभ वही उठाना चाहता है, अनेक भौतिक विचारों को रखता है। और तमोगुण के प्रभाव में अज्ञानता का अधिक प्रभाव रहता है। सत्वगुण जो है रजगुण और तमोगुण से आगे है। तो जब यहां ये श्लोक में कहा जा रहा है कई लोग दान देते हैं, तपस्या करते हैं और अनेक व्रतों का पालन करते हैं, ये उन व्यक्तियों का वर्णन है जो कि सत्वगुण में है। पर भगवान गीता में समझाते हैं सत्वगुण का प्रभाव भी रहे, पर उस स्थिति में आपके मन में संघर्ष होते रहेगा जिसके द्वारा कभी सत्वगुण की विजय होगी और रजगुण तमोगुण की हार। पर कई बार रजगुण की विजय होगी और दूसरे गुणों की हार, और कई बार तमोगुण की विजय होगी और दूसरे दो गुणों की हार। इसलिए भगवान कहते हैं सत्वगुण के प्रभाव से भी निकलो। कहां आओ फिर? सत्वगुण के प्रभाव से निकलोगे तो कहां आओगे? शुद्ध सत्व, बिल्कुल शुद्ध भक्ति के मार्ग पर आओ, निष्काम भाव से आओ। और निष्काम भाव से आओगे तो फिर आपके मन में सदा एक ही भाव रहेगा, वो भाव है भगवान की सेवा। तो आज के इस श्लोक में बड़े स्पष्ट रूप से ये बताया जा रहा है कि सतगुण का भी अंत नहीं है। सतगुण के पार है क्या? शुद्ध सत्व, शुद्ध भक्ति के शुद्ध भाव से भक्ति करना। इस विषय में चैतन्य चरितमृत में बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, कृष्णा भक्ता निष्कामा अतएव शांता, भक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकाली अशांता। जो भक्त निष्काम भाव से जुड़ते हैं उनका जो मन है हमेशा शांत रहेगा, और जो कि साकाम भाव से जुड़ते हैं वो सदा अशांत रहेंगे। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये समझा रहे हैं, शुद्ध भक्ति का अर्थ है अनाभिलाषता शून्यम, ज्ञान कर्म अनुतम, अनुकूलन कृष्णो सदाने भक्ति उत्तमा। उत्तमा का अर्थ है सबसे उत्तम, सबसे प्रसिद्ध, नंबर वन। तो नंबर वन भक्ति क्या है? सबसे ऊंचा स्टैंडर्ड भक्ति का क्या है? जब आप बिना किसी इच्छा के भगवान की सेवा में जुड़ते हो, बेशक आरंभ में भौतिक इच्छा हो, पर शुद्ध भक्ति का इतना गहरा प्रभाव है कि अगर आप भक्ति की विधियों का पालन करोगे तो बिना शंका के हृदय को शुद्ध बना सकोगे। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम के द्वारा आपको क्या उपदेश मिल रहा है? शुद्ध भक्ति का। व्यासदेव जी ने अनेक शास्त्रों की रचना की है, इनके सार को प्रस्तुत किया है वेदांत सूत्र में, पर जब भी व्यासदेव को अनुभव हो रहा था कि उनके कार्य में कुछ कमी रह गई है, वो इस प्रकार का विचार कर रहे थे, क्या कमी रह गई है? सरस्वती नदी के तट पर ये विचार कर रहे थे, और जैसे ही विचार कर रहे थे वहां कौन पहुंच गए? नारद मुनि, जिन्होंने कहा कि शुद्ध भक्ति पर बल दो, और जिसके पश्चात उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की। तो शुरू से अंत तक श्रीमद् भागवतम में शुद्ध भक्ति का के विषय की चर्चा की जाती है, शुरू से अंत तक। ये जो भाव आज के श्लोक में प्रस्तुत किया जा रहा है, यही भाव प्रथम स्कंध में भी था, सर्वे पुंसाम परो धर्मो यह तो भक्ति अजोग से दे अही तो केवल था, ये आत्मा से प्रसिद्ध थी। वो धर्म सबसे उत्तम है जहां की हम निष्काम, जो कि निष्काम भाव से करते हैं, यही भाव 12वें स्कंध तक प्रस्तुत होगा। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं कि शुद्ध भक्ति के मार्ग को हमें अपनाना चाहिए, और शुद्ध भक्ति के मार्ग में जुड़ोगे तो फिर जो हृदय की मैल है ये दूर हो जाएगी। और शुद्ध भक्ति आरंभ कैसे होती है? हरे नाम के द्वारा। जब प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु ने बेटे को गोद में बिठाया, प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु इतने क्रोधित थे क्योंकि वो ये नहीं समझ पा रहे थे मेरे बेटे को भगवान का ज्ञान कौन दे रहा है, विष्णु तो मेरा शत्रु है और ये विष्णु का इतना गुणगान करता है। तो हिरण्यकशिपु ने सुंदर मरका को डांटा, कहा तुम ठीक काम नहीं कर रहे, मेरे बेटे के पास इतना ज्ञान कहां से आ रहा है विष्णु के प्रति। सुंदर मरका ने कहा हम मानते हैं आप बड़े प्रभावशाली राजा हो, पर हमें गलत कार्य करके कार्य के लिए दोष मत दो, हम ब्राह्मण हैं, आपको अपराध होगा, हमने आपके बेटे को विष्णु का कोई ज्ञान नहीं दिया, हमें खुद नहीं पता कि कहां से ये ज्ञान आ जाता है आपके बेटे को। तो पर उन्होंने कहा घबराओ मत, हम इसके दिमाग को बदल देंगे, ब्रेन वॉश कर देंगे। और कुछ दिनों बाद संदा मरकर ने हिरण्यकशिपु को कहा अब हमने आपके बेटे का दिमाग बिल्कुल बदल दिया है, अगर आपको चाहिए तो परीक्षा ले लो। तो पिता ने बेटे को गोद में बिठाकर पूछा, ये अनेक विषयों के जो तुम्हें सिखाया जाता है पाठशाला में, इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या सीखा है तुमने? उन्होंने सोचा था बेटा कहेगा आप हो पिता सर्वश्रेष्ठ विष्णु की बजाय, और बेटे ने क्या कह दिया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम आचरम दस्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। जैसे ही नवद भक्ति का सुना, पिता ने बेटे को उठाकर नीचे फेंक दिया। तो शुद्ध भक्ति आरंभ होती है कैसे? श्रवणम और कीर्तनम के द्वारा। इसीलिए वैष्णव भक्त हर जगह इसी संदेश का प्रचार करते हैं। ये नहीं कि भारत में एक प्रचार, अमेरिका में दूसरा प्रचार, रशिया में तीसरे भाव का प्रचार। ये है शास्त्रों का निर्णय। श्रीमता स्वागत कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना, हृदय के जो महल है ये दूर होगी केवल हरि नाम के उच्चारण के द्वारा, और कोई उपाय नहीं है। प्रभुपाद जी ने इस संस्था की स्थापना की कैसे? प्रभुपाद जी तो गए थे 40 रुपए के साथ अमेरिका, और अपने भागवतम को साथ ले गए थे, पर प्रभुपाद जी ने कीर्तन आरंभ किया, हरि नाम का प्रचार किया, जिसके द्वारा लोगों का हृदय शुद्ध होता गया और गुण जुड़े बड़ी गहराई के साथ भक्ति योग के मार्ग में। तो श्रवणम कीर्तनम द्वारा भक्ति योग आरंभ होती है, और हमारे शास्त्रों में बार बार इस विषय की चर्चा की जाती है। क्यों? क्योंकि कलयुग में हमारी बुद्धि इतनी कमजोर है और माया का इतना तेज प्रभाव है कि एक बार सुनने से काम नहीं चलेगा, बार बार सुनने की आवश्यकता है। इसलिए हरि नाम का जाप, शास्त्रों का अध्ययन एक दिन के लिए नहीं, ये है इलाज हमेशा के लिए। तो भौतिक इच्छाओं से हमें बचना है। भौतिक इच्छाओं, भौतिक कार्यों के द्वारा भयंकर परिणाम भुगतना पड़ता है, और जब तक भौतिक इच्छा रहेगी, हृदय की मेहनत रहेगी, भगवान वहां निवास नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हो कि भगवान आपके हृदय में निवास करें, तो हमें हृदय की जो मैल है इसे दूर करना है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रतिनिधियों को तो आदेश दिया था भक्ति संबंधित ग्रंथों की रचना करने के लिए, पर स्वयं चैतन्य महाप्रभु के वो 8 श्लोक छोड़ गए, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, और शिष्टाष्टक के सबसे प्रथम श्लोक में महाप्रभु ने क्या कहा, छेद दर्पण मार्जन भवमग्नि निर्वापना। हरि नाम के उच्चारण का सबसे पहला लाभ क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मद वैराग्य, इनका जो प्रभाव है वो घटते जाता है। यह हरि नाम के उच्चारण का सबसे पहला लाभ। तो भक्ति योग आरंभ होता है शरणम कीर्तनम के माध्यम से। आप धाम दे दो, तपस्या उठाओ, व्रत रखो, अनेक विधियों का पालन करो, पर हरि नाम का जाप नहीं करो, साधु संगत में नहीं रहो, तो क्या परिणाम होगा? ये मैल निकलेगी? नहीं निकलेगी। आप अनेक शुद्ध विचार के व्यक्तियों को भारत में मिलते हो जो दान देते हैं, बड़े तपस्वी हैं, बड़े व्रत इत्यादि रखते हैं, पर क्योंकि ध्यान पूर्वक जाप नहीं करते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्तों की संगत में नहीं रहते, शुद्ध भक्तों से शिक्षा ग्रहण नहीं करते। हम गुरु स्वीकार कर लेंगे, पर ऐसा गुरु हमें नहीं चाहिए जो कि शुद्ध संदेश दे रहा है। हमें ऐसा गुरु चाहिए जो कि हमारे इंद्रिय तृप्ति के कार्यों को आशीर्वाद है। और हर कोई गुरु कहे नहीं इंद्रिय तृप्ति से बचना है तो फिर नहीं चाहे। जब प्रभुपाद अमेरिका गए उन्होंने शुद्ध भक्ति के संदेश देना आरंभ किया और उस समय कई सन्यासी थे जो भारत से गए थे धन कमाने नाम कमाने के लिए। तो जब उन्होंने सुना प्रभुपाद का संदेश शुद्ध भक्ति चार नियमों का पालन हरि नाम का उच्चारण धोती कुर्ता पहना तिलक लगाना सब आए प्रभुपाद जी से मिलने और कहने लगे स्वामी जी आप तो नए आए हो भारत से हम तो पुराने हैं आप जो संदेश दे रहे हो कोई नहीं सुनेगा आप इस संदेश को बदल दो आप ही हमारे जैसे सूट में घूमना शुरू कर दो छुरे काटे से खाना शुरू कर दो और लोगों को मत कहो ये चार नियमों के बारे में। प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं यहां आया हूं भगवान की शुद्ध भक्ति का प्रचार करने के लिए। जब प्रभुपाद जी बोस्टन में पहली बार पहुंचे भारत से निकले थे जलदूत जहाज में जब प्रभुपाद जी ने बोस्टन में समाज की स्थिति देखी अमेरिकन लोगों की स्थिति देखी कितने गहराई से जुड़े हुए हैं इंद्र तृप्ति में प्रभुपाद जी ने सोचा कौन सुनेगा मेरे संदेश को यहां के लोग इतने गहराई से माया के नशे में। पर आगे उन्होंने ये भाव प्रकट किया पर राधा रानी जी की असीम कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। जैसे कि चैतन्य चरितमृत में कहा गया है चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से अंधा व्यक्ति देख सकता है लंगड़ा व्यक्ति चल नहीं पहाड़ों के पार जा सकता है गूंगा व्यक्ति बोल सकता है बहरा व्यक्ति सुन सकता है और चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से कठिन कार्य सरल हो जाते हैं और उनकी कृपा के बिना सरल कार्य कठिन हो जाते हैं। तो भक्ति योग के माध्यम से आप काम क्रोध लोभ मोह मन मत्सर्य के प्रभाव को दूर कर सकते हो। तो बड़े स्पष्ट रूप से प्रभुपाद जी कह रहे हैं भौतिक इच्छाओं को तुरंत रोको तुरंत ये नहीं ठीक है हमने 20 साल की योजना बनाई है अगले 10 सालों में ये रोकेंगे अगले 10 सालों में ये रोकेंगे तो ये चलेगा क्या क्यों जिंदगी का क्या भरोसा कोई भरोसा है कुछ भरोसा है आपके एनआई स्टूडेंट्स को भरोसा गारंटी एनआईटी या आईआईटी में गारंटी देते हैं कि इतने साल मृत्यु नहीं आएगी नहीं हाँ कोई पाठशाला महाविद्यालय इंश्योरेंस कंपनी है जो ये गारंटी देती है कि और 50 साल मृत्यु नहीं आएगी। भागवत में क्या कहा गया है पदम पदम याद भी पदम न दशम कदम कदम पर खतरा है इसलिए हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। तो कई बार भक्त लोग कहते हैं पर माया का विरोध करना बड़ा कठिन है आप लोग बड़ा बड़ा उपदेश दे देते हो शास्त्र में बड़ा ऊंचा सिद्धांत है पर ये तो गहरा कलयुग है क्या इस युग में संभव है क्या इंद्रिय तृप्ति से बचने के लिए है या नहीं है आपको लगता है नहीं है? है तो क्या है माध्यम ये भक्ति योग। तो भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने के लिए साधु संगत की आवश्यकता है। साधु संगत सर्वशास्त्र का साधुओं की संगत में रहोगे तो ज्ञान मिलेगा तो अज्ञानता दूर होगी और आप ये समझ सकोगे क्या शुभ कार्य है क्या प्रतिकूल कार्य है। तो ये साधु की संगत आप कैसे प्राप्त करते हो ये साधु संगत के दो माध्यम हैं। एक है भक्त साधु, जैसे आप भक्तों की संगत में आते हो। दूसरा है ग्रंथ साधु, ग्रंथों की संगत। जैसे आप जानते हो इस्कॉन संस्था के द्वारा, इस्कॉन संस्था में प्रचार के कार्य पर बल दिया जाता है, खास करके ग्रंथों के वितरण की सेवा पर बल दिया जाता है। क्या कार्य है, क्या उद्देश्य है, और इस समय हम मैराथन में जुड़े हैं जिसमें हम सब प्रयास कर रहे हैं अधिक से अधिक मात्रा में लोगों को गीता का संदेश मिले। खास करके क्योंकि ये गीता जयंती का महीना है, 13 तारीख अगली एकादशी है गीता जयंती, और गीता जयंती जैसे किसका जन्मदिन होता है तो आप जन्मदिन में लोगों को प्रेजेंट देते हो ना। मान लो आपके घर में किसका जन्मदिन है तो आप सोचते हो जन्मदिन में मैं अपने बेटे को क्या तोहफा दूंगा, सोचते हो ना। कोई मित्र भी है तो आपको प्रेजेंट देना चाहते हो। तो गीता जयंती के संबंध में, उपलक्ष्य में भक्त ये सोचते हैं हम भगवान कृष्ण को क्या प्रेजेंट दे सकते हैं। भगवान ने 18वें अध्याय में कह दिया है कि सब प्रकार के सेवाओं में, सब अनेक भक्तों में सबसे प्रिय कौन भक्त है मेरा, हाँ, जो प्रचार करता है उससे ज्यादा प्रिय न को हुआ है ना होगा। तो हम सब ये ग्रंथ भगव ग्रंथ संघ साधु ग्रंथ का वितरण क्यों करते हैं, क्योंकि इन ग्रंथों में भगवान की वाणी है। भगवान की वाणी के अध्ययन से अज्ञानता दूर होती है। तो ये जो ग्रंथों के वितरण की सेवा है ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए है, कि भगवान चाहते हैं सारे बद जीव लौटें कहां, उनके देवी धाम में। जिस प्रकार माता पिता जब देखते हैं औलाद को गलत रास्ते में चलते हुए तो दुखी हो जाते हैं ना, उनकी इच्छा रहती है औलाद घर वापस आए। तो भगवान की इच्छा है कि हम सब कहां लौटें, कहां लौटें, वैकुंठ धाम, यहां की किसी प्रकार का कष्ट नहीं, क्लेश नहीं। और ये क्या है, कुंत जगत, यहां की क्लेश ही क्लेश, कष्ट ही कष्ट। पर वैकुंठ जगत लौटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, और वो प्रयास है भक्ति योग का पालन, और भक्ति योग का ज्ञान कहाँ है, इन ग्रंथों में। तो ग्रंथ भगवत की संगत से अज्ञानता दूर होती है। तो ये जो ग्रंथों के वितरण की सेवा है ये एक रूप से समाज में सबसे ऊंची सेवा है। आप किसी को कोई साधन दे दो जिसके द्वारा वो धन कमा ले, धन कमा लेगा, इंडिया तिप्ती में खर्च देगा। पर अगर आप किसी को ज्ञान दो, ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, सर्व धर्म आप पढ़ी तेज मां में एकम शरणम रज, हम तो हम सर्वे पापे मोक्ष में मां सोचा, ये ज्ञान दो, तो ये है असली सेवा। तो आप सब जो ग्रंथों के वितरण की सेवा में जुड़े हो, आप जो सेवा कर रहे हो, इसे प्रभुपद हमारे आचार्य अत्यंत प्रसन्न हैं। इस सेवा से परम भगवान जो हैं अत्यंत प्रसन्न हैं। क्यों, क्योंकि भगवान चाहते हैं सारे बजीव कहां लौटे, उनके चरण कमलों में, सारे बजीव भक्ति योग को अपनाएं। और ये अनुभव है कि इन ग्रंथों के वितरण से जो इन ग्रंथों को पढ़ते हैं वो प्रभावित होते हैं किसके प्रति, भक्ति योग के प्रति। तो ये ग्रंथों की सेवा सबसे महत्वपूर्ण सेवा है समाज के सुख के लिए। वैष्णव जो है उसे कहा जाता है परा दुखा दुखी। परा दुखा दुखी का अर्थ क्या है, जब हम देखते हैं दूसरा व्यक्ति भौतिक कार्यों में जुड़ा है, इंद्रिय तृप्ति में जुड़ा है, वैष्णव को बिना शंका के ये ज्ञान रहता है इसका भयंकर परिणाम होगा, जिसका वर्णन भगवतन के 5वें स्कंद में। इसलिए वैष्णव ये सोचता है मुझे इस व्यक्ति को बचाने दो। भगवान ऋषभदेव भागवतम के पांचवें स्कंध में उदाहरण देते हैं। भगवान ईश्वरदेव कहते हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति जब अंधे व्यक्ति को गलत रास्ते में चलते हुए देखता है वो क्या करता है? आप कभी कभी सड़क में चलते हो तो देखते होगे कोई अंधा व्यक्ति चल रहा है सफेद केन के साथ, गलत रास्ते जा रहा है, तो आप क्या करते हो? गलत रास्ते चलने देते हो? जाके उसके हाथ को पकड़कर सीधे रास्ते में डाल देते है कि नहीं? तो ये उदाहरण भगवान ऋषभदेव जी देते हैं। जिस प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति अंधे व्यक्ति को ठीक रास्ते में जोड़ देता है, उसी प्रकार जो वैष्णव है वो प्रचार के द्वारा लोगों को ठीक रास्ते में जोड़ना चाहता है। प्रहलाद महाराज ने सातवें स्कंध में क्या कहा? हे भगवान, मुझे अपनी मुक्ति की चिंता नहीं, मैं जंगलों में नहीं रहना चाहता, मैं पहाड़ों में नहीं रहना चाहता, मैं वहां रहना चाहता हूं जहां मैं लोगों को दिव्य ज्ञान दे सकूं। तो ये होना चाहिए हम सबका भाव। तो ये जो प्रचार की सेवा जिसमें आप सबसे निवेदन किया जाता है करने के लिए, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि भगवान की इच्छा है, चैतन्य महाप्रभु जी की इच्छा है। जैसे महाप्रभु ने एक नित्यानंद हरिदास को बोला, घर घर जाओ और प्रचार करो, क्या बोलो? कृष्ण वाजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, सबसे निवेदन करो हाथ जोड़कर, कृष्णा का नाम लो, कृष्णा की शिक्षा को अपनाओ, कृष्णा का भजन करो। तो ये है हम सबका कर्तव्य। तो आप सबसे निवेदन है, आप जुड़िए इस सेवा में। इससे आप में से कौन कौन जुड़े हुए हैं ग्रंथों के वेतन की सेवा में? लगभग 70% लोग जुड़े हैं, पर 30% भक्त जो यहां उपस्थित हैं नहीं जुड़े। तो जो नहीं जुड़े उन्हें क्या करना चाहिए? जुड़ जाना चाहिए। तो नहीं जुड़े वो जुड़ने को तैयार हैं, और हम जो प्रचार करें हमें उत्साहित होना चाहिए। ये नहीं, अच्छा स्वामी जी ने कहा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, ठीक है नाम के वास्ते हम ही कर देंगे, तो हम ही बाहर चल जाए। रूपक गोस्वामी कहते हैं, उत्साह निश्चय धैर्य तत्पर कर्म प्रवर्तन संगत आगे सतवृद्धि सद्वीर भक्ति प्रसुद्धि। भगवान की सेवा में आप जुड़े हो तो हमें उत्साहित होना चाहिए। आप ग्रंथ के वेतन की सेवा में जाते हो हाँ, पर वहां जाकर आप खड़े हो जाते हो, हाँ जिसने लेना आएगा लेने तो लोग लेंगे, पर आप जो ना उत्साहित होकर कहोगे पढ़िए पढ़िए, हर समस्या का हल है यहाँ, हर प्रश्न का उत्तर है, और गीता का संदेह, उत्साहित होकर करोगे फिर लोग कहेंगे ये भक्त इतना उत्साहित था, इतना उत्साहित है, हमें ग्रंथ लेना नहीं था। तो हम जब प्रचार की सेवा कर रहे हैं हमें उत्साहित होकर करना चाहिए। आखिर हम किसका संदेश का वितरण कर रहे हैं? भगवान के संदेश का। और अगर इस पृथ्वी पर किसी चीज की कमी है तो इस दिव्य ज्ञान की कमी है। और बहुत ही कमियां तो रहेंगी, बहुत ही क्लेश बढ़ते जा रहा है, और इस सब समस्या का हल क्या है ये आध्यात्मिक हल। तो आप सब इस सेवा में जुड़ने को तैयार हो? सब पक्का? कुछ अड़चन आएगी तो डर जाओगे? अड़चने तो आएंगी। जब भगवान नित्यानंद और हरिदास प्रचार कर रहे थे, ये नहीं कि सबने साथ दिया, कहीं ने उनका विरोध भी किया। तो जब आप प्रचार करोगे कई साथ देंगे, कई विरोध करेंगे, कई निंदा करेंगे, कई हंसेंगे, पर हमें दृढ़ होकर उत्साह निश्चय दृढ़ होकर इस सेवा में जुड़ना है प्रभुपाद और महान आचार्यों की प्रशंसा के लिए। तो आप सबसे निवेदन है, ये महर्षण का महीना है, आप सब प्रयास कीजिएगा अधिक से अधिक मात्रा में ग्रंथ के वितरण की सेवा में सहयोग देने के लिए। और भगवान क्या कहते हैं, सबसे प्रिय कौन है? तो आप भगवान के प्रिय बनना चाहते हो? भगवान के प्रिय या माया के प्रिय? इस वक्त हम सब माया प्रिय हैं, माया के प्रिय है। तो अगर भगवान के प्रिय बनना चाहते हो तो भक्ति की विधियों का पालन करो और भगवान के संदेश को आगे बढ़ाओ। कई बार भक्त पूछते हैं, कोई शॉर्टकट नहीं है भक्ति में? तो ये है शॉर्टकट, प्रचार करो और प्रचार के कार्य में जुड़ोगे। और अगर कुछ कमी भी है तो भगवान उसे दूर कर देंगे। तो सब जुड़ोगे मैराथन में उत्साह के साथ, दृढ़ होकर। ओके, हरे कृष्णा। ओके, 9:30 बज गए। कोई प्रश्न है? ओके, क्वेश्चन। So we'll stop at this point, huh? It's 9:30. Our marathon is the sub.
Attend.
Tiyari kijiyega marathon ke liye. Hare Krishna.